Recording in progress. Recording.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम सूरह अनआम की तफसीर पढ़ रहे हैं। हमारे कुरान जिल्द नंबर 3 से और आयत नंबर 94 जो अभी तिलावत की गई, तो उसका खुलासा तफसीर बस पढ़ना हमारा रह गया था। उसके बाद फिर हम आरिफ व मसाइल पढ़ने शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। तो इस आयत ये तफसीर में हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि खुलासा तफसीर जो है वो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बयान कुरान से यहाँ पे नकल की गई है। तो उसमें हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और तुम में जो बाज को अपने बातिल माबूदों की शफाअत का भरोसा था, तुम में जो बाज को तुम यानी कि भाई ये जो बातिल माबूद है ना, वो कयामत के दिन शफाअत कर देंगे। यानी इनमें ऐसे भी तो थे ना कि जो कि कयामत का सिरे से इनकार ही कर देते थे, ठीक है। और बाज ऐसे भी थे जो कयामत का इनकार नहीं भी करते थे कि हाँ होगा, मरने के बाद कोई जिंदगी होगी भी। तो उनको ये ज़ोम था, उनको ये गुमान था कि मरने के बाद की जिंदगी होगी ना, तो उसमें तो हमारा कोई मसला ही नहीं है, उसमें तो हमारा कोई हिसाब किताब होना नहीं है। अगर कुछ हुआ भी तो हमारे जो ये माबूद हैं ये हमें वहाँ पे छुड़वा लेंगे किसी मसले मसाइल से, क्योंकि दिल में इनके चोट तो था कि इन्होंने लोगों के ऊपर जुल्म किया है, इन्होंने जो है वो उल्टी सीधी हरकतें करी हैं, गुनाह किए हैं, लोगों को मारा है, कत्ल किया है, गारत करी है, लोगों का माल लूटा है। तो ये सारी हरकतें तो फिर ऐसी होती है ना जो कि यूनिवर्सली जिनको कि बुरा समझा जाता है, किसी खास रिलीजन में नहीं बल्कि हर इंसान ही इनको बुरा समझता है, लोगों के ऊपर जुल्म करना, ठीक है। आज भी इसको कोई दीन इस्लाम को ना भी मानने वाला हो तो उसको भी ये चीजें बुरी लगती हैं। तो इनको भी पता तो था कि इन्होंने गड़बड़े करी है, लेकिन इनका जुकम क्या था कि इनके बातिल माबूद जो है ना इनको छोड़ा देंगे। तो इस वजह से हजरत ने यहाँ पे बाज का लफ्ज गालबन इसी वजह से लिखा, क्योंकि बाकी जो थे वो तो सिरे से मौत के बाद वाली जिंदगी का इनकार ही कर देते थे ना कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला है बाद में, कुछ है ही नहीं बाद में, ठीक है। फरमाया कि तुम में जो बाज को अपने बातिल माबूदों की शफात का भरोसा था, सो हम तो तुम्हारे हमरा इस वक्त तुम्हारे इन शफात करने वालों को नहीं देखते, ठीक है। फरमाया ना कि वो मा नरा मअकुम शुफाअकुम शुफाअकुम, ठीक है, अल्लदीन ज़अमतुम, कि जिनकी नस्बत तुम दावा करते थे या तुम गुमान रखते थे जिससे साबित हुआ कि वाकई में भी तुम्हारे साथ नहीं है, यानी हम नहीं देखते का मतलब वो है ही नहीं, अगर होते तो नजर आते ना भाई, ठीक है, तुम्हारे साथ तो वो है ही नहीं, जिनकी नस्बत तुम दावा करते थे या गुमान रखते थे, ज़ोन करते थे कि वो तुम्हारे मामले में हमारे शरीक हैं, ठीक है, यानी वो तुम्हारे मामले में हमारे शरीक हैं, यानी हम खाली अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि खाली मैं अकेला नहीं हूं जो तुम्हारे बारे में फैसला करेगा, बल्कि नऊज़ बिल्ला मुझे गोया कि तुम्हारे इन बुतों से मशवरा करके उनकी राय लेकर के और उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला करना है। तुम्हारा ये ख्याल था कि मैं उनकी मर्जी के मुताबिक तुम्हारे मुताबिक फैसला करूंगा, कि तुम्हारा जो मुआमला इबादत हमारे साथ होता था वही उनके साथ होता था, ठीक है। यानी क्या तफसीर लिखी कि ये जो شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، کہ بے شک وہ جو ہے نا تمہارے معاملے میں، فیکم کا مطلب تمہارے معاملے میں شریک ہیں، اس چیز کے شریک ہیں، اللہ کے شریک ہیں، یعنی اللہ کے ڈسیشن میکنگ اتھارٹی میں ان کا بھی جو ہے نا وہ ایک رول ہے، ان کا بھی ایک رول ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اکیلے ڈسیشن میکنگ نہیں کریں گے تمہارے بارے میں، بلکہ ان کے پریشر میں آ کے ڈسیشن میکنگ کریں گے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا پرائم منسٹر، ٹھیک ہے، وہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ اپنی پارلیمنٹ کے اوپینین کا تابع ہوتا ہے، وہ اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس ویٹو پاور نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو جو پارلیمنٹ کی میجورٹی کہے گی وہ اس کو ماننا پڑے گا، حتیٰ کہ اگر اس کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس پولیٹیکل پارٹی کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی وہ پولیٹیکل پارٹی ممبرز کی جو اکثریتی رائے ہوگا اس کا تابع ہوگا نا، وہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پوری پولیٹیکل پارٹی اس کی ایک سائڈ پر ہے اور پرائم منسٹر صاحب اگر اس رائے سے اگری نہیں کرتے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب اپنی چلا دیں گے، نہیں، بلکہ ان کو ماننی پڑے گی اپنے پارٹی ممبرز کی، ٹھیک ہے، تو تم نے اللہ کو بھی یہی سمجھ رکھا ہے، تم نے اللہ کو بھی یہی سمجھ رکھا تھا کہ تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تنہا تنہا فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ انڈر انفلوئنس فیصلہ کریں گے ان بتوں اور ان باطل معبودوں کے انفلوئنس میں، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا یہ شرکا کا جو لفظ ہے نا اس کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی ہے بریکٹس کے اندر، ٹھیک ہے، کیا لکھا ہے انہوں نے کہ تمہارا جو معاملہ عبادت ہمارے ساتھ ہوتا تھا وہی ان کے ساتھ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کیا مطلب، جو معاملہ عبادت ہمارے ساتھ ہوتا تھا وہی ان کے ساتھ ہوتا تھا، تو اب اس کی بہت ہی سادہ سی آسان سی تشریح تو یہی ہے کہ بھئی تم ہمارے سامنے بھی سر جھکاتے تھے اور تم ان کے سامنے بھی سر جھکاتے تھے، ٹھیک ہے، تم ان کے سامنے بھی سجدہ کرتے تھے، تم ہمارے سامنے بھی سجدہ کرتے تھے، جیسے تم ہمیں سجدہ کرتے تھے ویسے انہیں سجدہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن کیا واقعی بات اتنی سی ہے؟ پچھلے دنوں کچھ، بلکہ پچھلے ہفتے کے دن، سنیچر کے دن جو ایک پروگرام ہوا تھا، آپ لوگوں کو بھی جو آن لائن ہیں ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سامنے لوگ موجود تھے، مرد اور نوجوان، بلکہ بچے بھی، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ مل کر کے آپ لوگوں کی ایک کلاس کری تھی، ٹھیک ہے، تو اس دن جو ہے نا وہ کلاس کے بعد جو ہے وہ ڈسکشنز ہوئی تھی تھوڑی سی تفسیر کے اوپر، یہ جو ہماری تفسیر کلاسز ہوتی ہیں اس کے سبجیکٹس کے اوپر، تو اس میں ایک بات آئی تھی کہ سجدہ کرنا جو ہے وہ کیوں برا ہے نا، یا سجدہ کرنا کیوں حرام ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، تو ہم نے یہ سوال پوچھا، تو اب جو ہے وہ کافی لوگوں نے، زیادہ تر نوجوان لڑکے ہی تھے، تو انہوں نے پھر کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا کہ سجدہ، مطلب میں نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ بھئی سجدہ کرنا کیوں برا ہے، کیا اس وجہ سے برا ہے کہ سجدہ کرتے ہیں نا تو وہ آپ کا سر جو ہے وہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے نا، تو شاید متلی آتی ہوگی، انسان کو الٹی آتی ہوگی کیونکہ سر نیچے چلا گیا ہے، بدن جو ہے وہ اوپر ہے، تو چونکہ متنی آنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، اس وجہ سے سجدہ کرنا برا ہے، ٹھیک ہے، کیا یہ وجہ ہے، مطلب مذاق میں یہ بات کہہ دی تھی، لیکن پھر دوسرے لوگوں نے اس کی مختلف وجوہات بتانی شروع کری، سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے اور سجدہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور ہم نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ہم نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح وجہ بتائیں کہ سجدہ کرنا کیوں حرام ہے، تو پھر الحمدللہ ایک ساتھی نے جو ہے بالکل صحیح اس کا جواب دے دیا، تو مردوں سے تو ہم نہیں پوچھتے کیونکہ انہوں نے سن لیا تھا وہ والا جواب، تو خواتین سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا کیوں حرام ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا کیوں حرام ہے، تو خواتین کی طرف سے اگر جواب آئے اس کا، یہ اور بات ہے کہ کسی کے بیٹے نے یا کسی کے شوہر نے اس کو بتا دیا ہو تو وہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے بتا دیا، لیکن پھر وہ نہیں بتائیں کلاس میں کیونکہ پھر وہ چیٹنگ ہو جائے گی، باقی خواتین بتائیں کہ بھائی سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا کیوں حرام ہے، Último Eduardo. तज़ीम होती है सजदे से, और गैर अल्लाह की तज़ीम इबादत की हद तक सही नहीं। जवाब गलत है, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है कि किसी और के सामने सजदा नहीं करना। तो आपको कैसे पता कि अल्लाह का हुक्म है? ठीक है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन ओनली फॉर अल्लाह सुब्हान तआला। ठीक, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन ओनली फॉर अल्लाह सुब्हान तआला। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम ने ये तो चीटिंग नहीं हो गई? चीटिंग हो गई। अच्छा ठीक है, तो देखें इसके ऊपर हमने यही जवाब दिया था कि भाई क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था? वहां पे याकूब अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, और सबने सजदा किया था, ठीक है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन और जो है वो ताजीम होती है। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था? आदम अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह खुदा तो नहीं थे, राइट? आदम अलैहिस्सलाम तो खुदा की मखलूक थे ना, हमारे आपके जैसे इंसान थे ना, ठीक है, मिट्टी के बने हुए। तो उनको सजदा नहीं किया था, सारे जो है वो फरिश्तों ने भी किया था, और जो है वो जिन्नों को भी हुक्म दिया गया था सजदा करो उस जुदूल आदम, ठीक है। तो इन ऑफ इट सेल्फ सजदा करना तो हराम ना हुआ ना, यानी सजदा करने की बुराई तो ना हुई ना। सजदा करना क्यों गलत है, क्यों बुरा हो गया? पहले तो बुरा नहीं था, यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत में, याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में तो बुरा नहीं था, अब क्यों बुरा हो गया? सिर्फ उसकी एक वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया, अल्लाह का हुक्म अब ये आ गया, जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया कि अल्लाह का हुक्म अब ये है कि नो मोर सजदा, जितने पहले हो गए वो मेरी तरफ से इजाजत थी करने की, अब नहीं, अब इजाजत खत्म हो गई है, अब नहीं करना है किसी को सजदा, ठीक है। तो हक इबादत जो है वो सजदा करना, तो भाई सजदा करना तो पहले तो गैर अल्लाह के लिए भी जायज था, ठीक है। तो मुआमला इबादत, इसको समझने के लिए फिर क्या चीज बरोए कार लानी पड़ेगी कि तुम्हारा जो मुआमला इबादत हमारे साथ होता था वही तुम्हारा उनके साथ होता है, ठीक है। तो फिर खाली सजदे से तो बात समझ में नहीं आएगी ना, ठीक है, कि जैसे तुम हमें सजदा करते हो वैसे उनको सजदा कर देते हो, क्या मतलब हुआ इसका थोड़ा सा? हाँ चलो, इन्होंने लिख दिया अकीदा यानी सोच, ठीक है, ये भी थोड़ा सा फीका सा जवाब है, ये भी थोड़ा सा फीका सा जवाब है कि तुम्हारी जैसी सोच हमारे बारे में वैसी सोच जो है वो इन बुतों के बारे में, ठीक है, बल्कि कुरान मजीद देखें, कुरान मजीद के साथ हमारा ताल्लुक जो है वो इससे ज्यादा मजबूत होना चाहिए ना, ठीक है। तो अल्लाह ताला इनके साथ जो जो इन काफिरों का रवैया था, या इन काफिरों का जो इनके साथ ताल्लुक था, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं बिल्कुल यही बात जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने उर्दू जुबान में यहां पर लिखी है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान मजीद में वही बात फरमाते हैं, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, युहिब्बूनहुम के वो अपने इन बातिल माबूदों से ऐसी इबादत, ऐसी मोहब्बत करते हैं, का हुब्बिल्लाह, जैसे कि अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। और आगे फरमाया वल्लजीना आमनू, और जो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाते हैं, उनके ऊपर एतमाद करते हैं, उनकी बताई हुई बातों को सच मानते हैं, वल्लजीना आमनू अशद्दु हुब्बल्लाह, अशद्दु हुब्बल्लाह, वो अल्लाह ताला से मोहब्बत जो है वो बाकी सबसे बढ़ करके करते हैं, वो अल्लाह ताला से मोहब्बत दूसरों की मोहब्बत के बराबर नहीं करते, कि जितनी मोहब्बत दूसरों को कर रहे हैं उतनी ही मोहब्बत अल्लाह से कर रहे हैं, नहीं,
बल्कि वो अल्लाह से मोहब्बत सबसे ज्यादा करते हैं, हर एक से ज्यादा करते हैं। इसी शदीद मोहब्बत को इबादत कहा जाता है, इसी शदीद मोहब्बत को इबादत कहा जाता है। जैसे कई दफा आप लोगों को इन्हीं क्लासेस के अंदर रमजान मुबारक के महीने में ही बात समझाई है कि इबादत जो है वो मोहब्बत की शदीद तरीन फॉर्म को कहा जाता है। ठीक है, तो ये ना तुम्हारा जो मामला इबादत हमारे साथ होता था ना, कि जैसे तुम हमारे साथ जो है वो मोहब्बत 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 के गुण गाते थे, उसी तरीके से तुम इनके साथ भी मोहब्बत मोहब्बत के गुण गाते थे। ठीक है, कभी हमारी मान ली, कभी इनकी मान ली, ठीक है ना, कभी अल्लाह की मान ली, कभी जो है वो अपने बुतों की मान ली। ठीक है, या कभी जो है वो असल में बुतों की तो नहीं होती, बल्कि बुतों के जो मुजावर होते हैं उनकी मान ली, और कभी जो है वो किसी रसूल की मान ली, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की किसी बात में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मान ली, किसी मामले में इस्माइल अलैहिस्सलाम की मान ली। ठीक है, और किसी मामले में जो है वो ये बुतों के केयर टेकर्स की मान ली, क्योंकि बुत तो बेचारे कुछ बोल ही नहीं सकते, तो केयर टेकर ही बताते हैं ना क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला क्या चाहते हैं? अल्लाह ताला दरअसल हमारी मोहब्बत चाहते हैं। ठीक है, हमारी मोहब्बत चाहते हैं, ये हमसे डिमांड है अल्लाह ताला की। और ऐसी मोहब्बत कि जो कि किसी दूसरे की मोहब्बत से कम ना हो, हत्ता कि किसी दूसरे की मोहब्बत के बराबर ना हो, बल्कि सबसे बढ़ करके मोहब्बत हो। इसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत इबादत का नाम देते हैं, इसी को इबादत का नाम देते हैं। ठीक है ना, हम तरावी के अंदर खड़े हुए थे अपने इमाम साहब के पीछे, वो जब सूरह अनकबूत की गालबन तिलावत हो रही थी, आप हुफाज हमारी इसलाह कर सकते हैं, सूरह अनकबूत में था या सूरह रोम में था, अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं, अ इलाहुम मा अल्लाह, अ इलाहुम मा अल्लाह, कि क्या अल्लाह ताला के साथ साथ कोई दूसरे भी माबूद हैं? और एक दफा नहीं फरमाते, बात करते हैं अपनी नेमतों की, बात करते हैं अपनी तख्लीक की, बात करते हैं और फिर दोहराते हैं, अ इलाहुम मा अल्लाह, अ इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ भी कोई माबूद है? क्या मतलब, क्या अल्लाह के साथ भी कोई ऐसी मोहब्बत के काबिल है जैसी अल्लाह मोहब्बत के काबिल है? अ इलाहुम अल्लाह, अल्लाह ताला देखें हुक्म नहीं कर रहे कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, तुम मुझसे मोहब्बत करो, बल्कि गोया के अल्लाह ताला दुहाई दे रहे हैं, अल्लाह ताला दुहाई दे रहे हैं, क्या जैसी मोहब्बत के लायक मैं हूं जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, क्या ऐसी मोहब्बत का लायक कोई और भी है? कोई और भी है ऐसी मोहब्बत का लायक? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपना कलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अपने अल्फाज, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपनी बात, उससे हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के सही जज्बात का पता चलता है, सही तवक्कुआत का पता चलता है, सही अल्लाह ताला की सही बात का पता चलता है। तो हम इस कुरान को क्यों नहीं हर चीज से ज्यादा अहम रखते, क्यों नहीं सबसे ज्यादा तवज्जो देते इस कुरान को? तो तुम्हारा जो मामला इबादत हमारे साथ होता था वही उनके साथ होता था, ये सूरह नमल की आयत है, अ इलाहुम्मा। सही, बाकी सब भी सही ग्रीड है, सूरह नमल ही क्या है, मुझे लग रहा है सूरह अनकबूत वगैरह क्या है। खैर, तो फरमाया कि तुम्हारा जो मामला इबादत हमारे साथ होता था वही उनके साथ होता था, वाकई तुम्हारे और उनके आपस में तो कता ताल्लुक हो गया। ठीक है ना, हमारे हजरत जी अक्सर ये जुमला भी फरमाया करते थे कि जो मखलूक से दिल लगाता है वो एक ना एक दिन मखलूक से जुदा कर दिया जाता है, जो मखलूक से दिल लगाता है वो एक ना एक दिन मखलूक से जुदा कर दिया जाता है, और जो खालिक से दिल लगाता है वो एक ना एक दिन खालिक से वासिल कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। क्या इस बात में कोई शक व शुबा की गुंजाइश है किसी के लिए? राइट, क्योंकि मौत तो हर एक ने आती है, मौत तो हर एक को आनी है, और मौत जब आएगी तो क्या फरमाया, लकद जी तुमुना फुरादा, अकेले तुम जो है वो हमारे पास लाए जाओगे अकेले। ठीक है ना, तुम्हारा हिसाब किताब हम कलेक्टिवली नहीं करेंगे लोगों के साथ, जब तुम मर करके हमारे पास आओगे अकेला। चाहे नाउज बिल्ला, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन कोई न्यूक्लियर फॉलआउट भी हो जाए ना अगर, तो न्यूक्लियर फॉलआउट का अंदाजा है ना कि विद इन माइक्रो सेकेंड्स और विद इन नैनो सेकेंड्स जो है वो लाखों लोग एक साथ मरेंगे, लाखों लोग, नैनो सेकेंड्स की भी शायद उसकी भी कम फ्रैक्शन हो, लेकिन इतने लाखों लोगों के एक साथ मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हिसाब हर एक का अलग अलग होगा, ठीक है? क्योंकि ये टाइम जो है ना, ये कल कल वो हदीस पढ़ी थी ना, कल या परसों, मिश्कात शरीफ की, कि अनदहर, ये जमाना तो मैं हूं, मेरे हाथ में ये, तुम्हारा टाइम जो है ना, तुम्हारा टाइम रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये तुम्हारे लिए है कि जल्दी से कोई काम हो गया, भाई आई एम द वन हु कंट्रोल्स टाइम, राइट? अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं आई एम द वन हु कंट्रोल्स टाइम, मेरे यहां ये जल्दी वल्दी का कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो अल्लाह ताला सबका अलग हिसाब करेंगे, तो भाई सब जुदा हो जाएंगे, सब जुदा हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है? और कौन रह जाएगा? सिर्फ अल्लाह, ठीक है? तो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो फिर अल्लाह ताला से मोहब्बत के साथ मुलाकात होगी, और अगर अल्लाह को छोड़ करके दूसरा से मोहब्बत करेंगे तो फिर अल्लाह ताला तो गैरतमंद है ना। अभी एक हदीस पढ़ी हुई आपने भी सुनी होगी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मुझे साद के गैरत के बारे में बताते हो, राइट? तुम मुझे बताते हो कि साद, वो गालबन कोई तीन साद थे ना, साद बिन उबादा, साद बिन अबी वकास रतान, और साद बिन मुआज रतान, गालबन साद बिन मुआज रतान के बारे में शायद हदीस है, कि तुम मुझे कहते हो कि साद बड़ा गैरतमंद है। नहीं, अल्लाह जो है ना, बल्कि मैं साद से भी ज्यादा गैरतमंद हूँ। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मैं साद से भी ज्यादा गैरतमंद हूँ और अल्लाह मुझसे भी ज्यादा गैरतमंद है, वल्लाहु अग़यरु मिन्नी, मुझसे भी ज्यादा अल्लाह ताला गैरतमंद है। तो मोहब्बत तो किसी और से करें, और अल्लाह ताला जो है ना वो फिर आपसे मोहब्बत, अल्लाह ताला फिर हमसे मोहब्बत करेंगे, हालांकि हमने तो अल्लाह ताला को नऊज़ बिल्ला उर्दू जुबान में क्या कहते हैं, घास भी ना डाली, लिफ्ट ही ना कराई, गैरतमंद है अल्लाह ताला, ऐसे नहीं है, ठीक है? तो हमें तौबा करनी चाहिए गैर अल्लाह की मोहब्बत से, और अल्लाह से जो है वो दिल लगाने की तदबीर करनी चाहिए। क्या क्या करें कि अल्लाह से दिल लग जाए हमारा, अल्लाह की बात माने, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो, तब जो है वो अल्लाह ताला हमें कबूल करेगा और अपनी मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर डालेगा। क्या लिखा उन्होंने कि ये सुनकर तो शेख साहब रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम इबादत नहीं करते, क्योंकि ऐसी मोहब्बत ही नहीं हमें अल्लाह से, बस डर ही, डर की वजह से फराइज अदा होते हैं। हाउ वी इम्प्रूव दिस, टेंशन वाली बात है ये बहुत ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपकी इस टेंशन को अपनी मोहब्बत के बदले कबूल फरमा ले, ठीक है? ये टेंशन हो जाना ये बहुत खुशी की बात है कि आपको ये टेंशन लग जाए, इसको तसव्वुफ की जुबान में इज़्तिराब कहते हैं, इज़्तिराब, अलिफ वाद ओ रा अलिफ बा, इज़्तिराब, ठीक है ना? ये टेंशन जो लग गई है ना कि हमारी तो इबादत इस काबिल नहीं है, ठीक है, हम क्या इबादत करते फिर रहे हैं, ये इज़्तिराब है, और यही कामयाबी है, इसका मिल जाना कामयाबी, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है? तो अच्छा, एक भाई से सुबह फजर के बाद बात भी हो रही थी, तो वो याद आ गई इस वक्त कि बड़े परेशान हो रहे हैं लोग ना, खबरों के अंदर जो खबरें आ रही हैं, ये हो गया, उसने बम मार दिया, इसने मिसाइल मार दिया, उसने जो है वो ललकार दिया, उसने ललकार का जवाब दे दिया, उसने ये बंद कर दिया, फ्लाइटें बंद हो गई, और ये हो गया और वो हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, और उसको जो है वो शहीद कह दिया, उसको हलाक कह दिया, उसको जो है वो ताजीम कर दी, उसकी ताजीम ना करी, उसको काफिर करार दे दिया, उसको काफिर ना करार दिया, उसको मोमिन करार दिया, उसको मोमिनों का जो है वो सरदार करार दिया, ये हुआ वे हुआ, लगे हुए मुस्तकिल मीडिया के ऊपर, लगे हैं मुस्तकिल जो है ना खबरों के ऊपर, ठीक है? अच्छा, फिर जब वो खबरें सुन सुन करके और टेंशन में आते हैं, तो फिर वो आ जाते हैं, अब जो है वो मौलवी साहब के पास पूछने के लिए आ रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, ये है वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मौलवी साहब जो है, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे जैसे लोगों की बात करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन हम जैसे लोग, तो अब जो है ना वो हम क्या करते हैं, हम भी उनको जो है ना वो खबरों के ही ऊपर जवाब देना शुरू कर देते हैं कि खबरों में ये ऐसे नहीं हो रहा, खबरों में ये वैसे है, खबरों में ये है, खबरों में वो है, खबरों में ये, खबरों में वो है, ठीक है? तो हम भी जो है ना वो खबरों में की बात शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस आजिश ने बात रखी कि भाई ये जो खबरें हैं ना, ये हमारी पिच नहीं है। पिच समझते हैं ना, वो मनहूस गेम क्रिकेट का, जिसकी वजह से हमें जो नुकसान हुआ है, हमें उसका इदराक ही नहीं है कि क्रिकेट की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। हमें इसका इदराक ही नहीं है। काश कि हमारी आंखें खुल जाए तो हमें पता चले, तो हमें इससे नफरत हो, ठीक है ना। बहरहाल मनहूस गेम क्रिकेट, उसकी मिसाल भी देनी पड़ जाती है, ठीक है ना। वो कंबल है ना, गीला कंबल, मैं तो छोड़ता हूं, मुझे छू कंबल मुझे नहीं छोड़ता, ठीक है। तो ये गीले कंबल की तरह से एक चीज है, बहरहाल तो वो छोड़ती नहीं है। तो क्रिकेट के जमाने की चीजें जो है वो याद आती हैं, जिस जमाने में हम भी खेलते थे भाई, अल्लाह माफ करे। तो उसमें पिच का कॉन्सेप्ट होता था कि जब किसी मुल्क की टीम किसी दूसरे मुल्क में खेलने के लिए जाती थी, या किसी शहर की टीम किसी दूसरे शहर में खेलने के लिए जाती थी, तो उस शहर की जो टीम होती थी ना, वो पिच को जो है ना वो अपने हिसाब से बनवाती थी, ठीक है। क्यों अपने हिसाब से बनवाती थी वो? इसलिए क्योंकि फास्ट बॉलर्स होते हैं और गुड बैट्समैन होते हैं, है ना, गुड बॉलर्स और गुड बैट्समैन। तो ये जो पिच बनाते हैं जिसके ऊपर वो बैट्समैन खड़े होकर के जो है वो बल्ला पकड़ करके खेलते हैं, और दूसरी तरफ से बॉलर आकर के जो है वो बॉलिंग करता है, तो बैट्समैन जो है वो उस बॉल को हिट करता है, ठीक है, उस जगह को पिच कहते हैं। तो वो पिच जो है ना वो खास करके बनाई जाती है, एक खास किस्म की पिच बनाई जाती है। तो कुछ पिच जो होती है ना वो बॉलर्स को सूट करने के लिए बनाई जाती है, बॉलर्स को सूट करने के लिए, कि जो बॉलिंग कराने वाला बंदा उस पिच पे जो बॉलिंग कराता है ना, तो वो पिच ऐसी होती है कि वो बहुत बॉलर की मदद करती है, यानी उसके ऊपर बॉल जो है वो बड़ी स्विंग करती है, बड़ी तेजी के साथ जो है ना वो बैट्समैन की तरफ वो बढ़ती है वो बॉल। तो ऐसी पिच को जो है वो क्या कहते हैं, बॉलर फेवरिंग पिच कहते हैं। और कुछ पिचेस ऐसी होती हैं, बनाई जाती हैं खास तौर पर, जो कि बैट्समैन को फेवर करती हैं, कि वो बैट्समैन जो होता है ना वो बहुत अच्छे से बैटिंग कर सकता है उस वाली पिच के ऊपर। तो ऐसी क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि जो लोकल टीम होती है ना, उसके पास या तो अच्छे बॉलर्स होते हैं या ज्यादा अच्छे बैट्समैन होते हैं। तो अगर उसके पास ज्यादा अच्छे बॉलर्स हैं, तो वो फिर ग्राउंड में जो पिच बनवाते हैं ना, वो ऐसी पिच बनवाते हैं जो कि बॉलर्स को फेवर करने वाली पिच हो, ठीक है, क्योंकि उनके पास अच्छे बॉलर्स हैं। और जो मुखालिफ टीम है, उसके पास अगर अच्छे बॉलर्स नहीं है, सिर्फ अच्छे बैट्समैन है, तो फिर वो इस पिच के ऊपर नहीं खेल सकेंगे, वो हार जाएंगे गेम, क्योंकि उनके पास तो अच्छे बॉलर्स हैं ही नहीं, उनके पास तो अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन जो पिच बनाई गई है ये तो बैट्समैन को फेवर ही नहीं करती, ये तो बॉलर्स को फेवर करती है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्रिकेट के अंदर ये बात बड़ी बोली जाती थी कि भाई आप जिस पिच पे जाके खेल रहे हैं, वो पिच जो है वो आपको फेवर कर भी रही है कि नहीं फेवर कर रही है। अगर वो पिच आपको फेवर नहीं कर रही, तो फिर आपके पास अच्छे प्लेयर्स हैं भी ना, फिर भी आप जीत नहीं सकेंगे, ठीक है ना। आप कितनी अच्छी बॉलिंग करा दें, लेकिन पिच जो है वो तो बैट्समैन फेवरिंग पिच है, तो आपके अच्छे बॉलर जो है वो नाकाम हो जाएंगे उसके अंदर। बैट्समैन आपकी बॉल को जो है वो खूब छक्के और चौके मारेंगे, खूब सारे का रन बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि जिनको नहीं भी पता था उनको भी समझ में आ गई होगी अब बात, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह क्रिकेट के अंदर पिच बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप किसकी पिच पे खेल रहे हैं, उसी तरीके से जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि आप जो है ना वो जब अपने मुखालिफ से बरसरे पैकार हैं, चाहे आप जुबानी तौर पर इंटेलेक्चुअली बरसरे पैकार हों, लेकिन आप उससे जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आप उसकी पिच पे कर रहे हैं कि अपनी पिच पे कर रहे हैं। दूसरा लफ्ज इसके लिए टर्फ भी इस्तेमाल होता है, टर्फ, ठीक है, कि आप उसके टर्फ पे बात कर रहे हैं कि अपनी टर्फ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो आप उससे उसकी टर्फ पे या उसकी पिच पे बात कर रहे हैं, यानी ऐसी पिच जो कि उसको फेवर करती है, अब आप उसको नहीं हरा सकते, बल्कि आप हार जाएंगे, वो जीत जाएगा, क्योंकि पिच जो है ना वो उसको फेवर करती है, टर्फ उसको फेवर करती है। तो इस वजह से बड़ा अहम होता है कि जब आप किसी से बात करें, ठीक है, किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसकी पिच पे खेलने की बजाय उसको अपनी पिच पे लेकर के आए, उसको अपनी पिच पर लेकर के आए, अपने पिच के ऊपर उसको आप शिकस्त दे सकेंगे, उसको कन्विंस कर सकेंगे। इंटेलेक्चुअल शिकस्त देना यहाँ पे मुराद है, कन्विंस करना। कोई मारपीट दंगा फसाद की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे, बल्कि कन्विंस करने की बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देने की बात कर रहे हैं। तो भाई अपने पिच के ऊपर पहले बंदे को लेकर के आना पड़ता है, फिर उस पर आप बात करते हैं, तब जो है ना वो आप कामयाब होते हैं। ये जो अखबारात की खबरें, ये जो हालात हाजरा की जो चल रही है ना, ये एक ईमान वाले की पिच नहीं है, ये हमें फेवर नहीं करती। क्यों? इसलिए कि ये सारा का सारा मीडिया का सिस्टम जो है ये शयातीन का बनाया हुआ है, और शयातीन ने उसको अपने फेवर के लिए बनाया है, अपने फायदे के लिए बनाया है। और शैतान का भी जो सबसे बड़ा जो आलाकार दज्जाल है, आज के जमाने का मीडिया सारा का सारा दज्जाली निजाम का हिस्सा है। ये तो धोखा है सारा का सारा, ये तो डिसेप्शन है सारी की सारी, ये तो दजन और फरेब है सारा का सारा। ठीक है, जिसके अंदर थोड़ा सा सच होता है और उसके साथ मिक्स जो है ना वो झूठ को किया हुआ होता है। अब देखने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि इसके अंदर क्या झूठ किस तरीके से जो है वो पेश किया जा रहा है। वो जाहिर को देख करके मानना शुरू कर देता है कि हाँ जैसा दिख रहा है वैसे ही होगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। जैसी बात हो रही है वैसी बात होगी, हालांकि ऐसा नहीं होता। ये दजल वाला सिस्टम है भाई, ठीक है, जानते भी है इस बात को, फिर भी पता नहीं हमारी अकल जो है वो कहाँ चली जाती है, शायद घास चरने चली जाती होगी, इस वजह से समझ में नहीं आ रही होती हमारे पास। तो आप उनकी पिच पे खेलेंगे, आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, बल्कि अगर आप बॉलर हैं तो आपकी गेंद के ऊपर उन्होंने छक्के मारने हैं, राइट, और आपने जो है ना वो मुंह की खानी है। ये आपकी पिच ही नहीं है, इसके ऊपर खेलने की कोशिश ना करें। आपकी अपनी पिच है, आपको अल्लाह ने पिच अता फरमाई है, नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से अल्लाह ने आपको पिच अता फरमाई है। बल्कि हमें तो हमारे मशाइख तक के वास्ते से, नबी अलैहिस्सलाम से होते 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 हमारे मशाइख तक जो इल्म पहुंचा, उनके वास्ते से हमें अल्लाह ताला ने बहुत ही तफसील के साथ जो है वो पिच अता फरमाई है। हम उस पिच पे लोगों को क्यों नहीं लेकर के आते, उस पिच पे लोगों को क्यों नहीं लेकर के आते, हम उनकी पिच पे जाके खेलना शुरू कर देते हैं। कोई फायदा नहीं होता उसका, आपको फायदा नहीं होगा कभी भी उसका। ठीक है, हमारी पिच है क्या? अब ये सवाल आपसे है कि हम अपनी पिच पे जो लेकर के आने की बात कर रहे हैं कि भाई अपनी पिच पे लेकर के आओ, तब जो है वो तुम सक्सेस कर सकोगे, सक्सीड कर सकोगे। हमारी पिच है क्या, ये जवाब नहीं चलेगा कुरान। ये तो मैं पहले से आपको बता चुका हूँ ना, ये ओपन बुक टेस्ट नहीं है कुरान या दरस कुरान, बल्कि आपको देता ना भी नहीं पता कि कुरान पर दरस कुरान भाई, ठीक है ना। वो भी आपने गलत जवाब सही नहीं दिया, यानी उनको तिलावतों पे लगा दो। कुरान का मत जवाब का मतलब क्या है, तिलावतों पे लगा दो उनको, तो वो इंटेलेक्चुअली कन्विंस हो जाएंगे। नहीं, दरस कुरान ठीक है, लेकिन अब हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि दरस कुरान, वो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कल से बात हो रही है, आज भी दोबारा बात हो रही है। तो हम फिर अब इसकी तफसील क्या है, हमारी पिच पे लेकर के आना, इसकी तफसील क्या है, ठीक है, हमारी सही सोच, ये क्या बात हुई, मशायख से जोड़ना, हमारी सही सोच क्या है, मशायख से जोड़ना, वे कैसे जोड़ोगे, यही तो हम कह रहे हैं। पिच पे लाकर उनको खेलने का मतलब क्या है भाई, उनको जोड़ना है ना बिलाखिर, तो कैसे जोड़ेंगे, ये हमारी पिच है क्या कि जिसकी बुनियाद पर आप उनको जोड़ेंगे। ठीक है, तवक्कुल, यानी आप कोई और नाम नाम दे दें, तकवा, तवक्कुल, रजा, ये हालात हाजरा में दरस कुरान से रहनुमाई, वो तो हो गई बात भाई, कुरान से दलायल जो उनके हालात से रेलिवेंट हों, उनकी क्या हालात हैं जिससे वो रेलिवेंट हों। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दीन बाय आवर सेल्फ, वी नीड अ टीचर। वो कहेंगे आपको जरूरत होगी टीचर की, मुझे कोई जरूरत नहीं है टीचर की। नहीं, हमारी पिच क्या है, कुरान से दलायल जो उनके, अच्छा, इल्म तवज्जो से हासिल करना और उनको प्रेजेंटेबल फॉर्म में उनको बलागो मुबीन करना, हमारी पिच क्या है। पिच पिच का मतलब यह है कि जो चीज हमें फेवर करती है, जिससे कि हम उनको कन्विंस कर सकते हैं, और उनको जो है ना वो उनकी जो जिन खराफात में वो पड़े हुए हैं उससे उनको हटा सकते हैं। देखें, पिच पे लाने का मतलब इंटेलेक्चुअली इसका मतलब ये भी है कि जिन चीजों पे उनका जहन फोकस हुआ हुआ है ना, उनके जहनों के फोकस को वहां से हटाना है। तो हटा के किधर लगाना है, ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं सर। उनके जहन के फोकस को मीडिया के ऊपर, और जो है वो फलाना काफिर है कि फलाना ईमान वाला है, कि फलाना शहीद है, कि फलाना हलाक है, कि फलाना जो है ये है, कि फलाना वो है, ठीक है, इससे हटा करके किधर लगाना है, ये हम आपसे पूछ रहे हैं असल में। हमारी पिच क्या है का मतलब ये है कि हम उनको किधर लगाएं, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट, व्हाट इज द कॉमन पॉइंट, हाउ डू यू प्रूव व्हाट इज द कॉमन पॉइंट। जो खबर आखिरत और आखिर जमान के बारे में हमें नबी अलैहिस्सलाम से मिली है, उनसे डराओ और जोड़ो मशायद से, ठीक है। जो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में मिली है उसे डराओ और मशायद से जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे, सुन्नत नबी से अपनी लाइफ की पॉजिटिव बातें बताएं, इल्म हासिल करने की तरफ अकायद देखें, ठीक है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत माशाल्लाह, अच्छे अच्छे आप लोगों ने क्वेश्चन करी है। मर्दों की तरफ कुछ और मैसेजेस आए हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं कि उन्हें इस तफसीर कुरान को इनवाइट करना और उन्हें कन्विंस करना शॉर्ट क्लिप से तफसीर की। दरस कुरान सुन्नत का रास्ता फिक्रों को सही करना अल्लाह की मदद पर, कि अल्लाह ही मसले हल करने वाले हैं। शैतान का इफेक्ट, शैतान का इफेक्ट, शैतान का इफेक्ट, ठीक है। सही, देखें अभी खवातीन में क्या हुआ था थोड़ी देर पहले, ये सवाल करने से पहले, जिसकी वजह से शायद ये डिस्कशन शुरू हुई, वो क्या था, ये भी आप, हम आपके साथ शेयर करते हैं। मर्दों में कोई अगर कर सके इसको शेयर, लेकिन मेरा ये इन्होंने लिखा था, ठीक है जी, ठीक है, ये करना पड़ेगा, ये हमारी पिच है, ठीक है ना, ये हमारी पिच है, और ये कोई झूठ और धोखा नहीं है, ये हकीकत है। यानी ये नहीं कर रहा कि मैं किसी को बेवकूफ बना करके अपनी पिच पे लेकर के आ रहा हूं, ताकि वो जो है ना वो दूसरी तरफ से उसका तवज्जो हट जाए और मेरी तरफ आ जाए, मेरी दुकान चमकेगी उसके बाद, राइट right? फिर मेरी दुकान चमकेगी, फिर मैं जो हूँ वो लोगों से हदिये लूंगा, फिर मैं लोगों से जो है वो इज्जत हासिल करूंगा, और जो है वो इस वजह से नहीं, ये नीयत तो बिल्कुल ही मर्दूद नीयत है, बल्कि हकीकत की वजह से, हकीकत कि लोगों को हमने इज़्तिराब में मुब्तला करना है, इज़्तिराब में मुब्तला करना है। कौन सा वाला इज़्तिराब, वो वाला इज़्तिराब नहीं जो मीडिया की वजह से आया हुआ है, वो वाला इज़्तिराब नहीं जो मीडिया की वजह से आया हुआ है, बल्कि हमें हकीकी इज़्तिराब में मुब्तला करना है लोगों को। कौन सा हकीकी इज़्तिराब, कौन सा हकीकी इज़्तिराब जिससे कि उनको फायदा होगा, जिससे कि उनको फायदा होगा। ख़वातीन की तरफ से मैसेज आया था तो मर्दों को खाली पढ़ के सुना देते हैं। इन्होंने मैसेज लिखा था कि ये सुनकर तो शेख साहब रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम इबादत नहीं करते क्योंकि ऐसी मोहब्बत ही नहीं हमें अल्लाह से, बस डर की वजह से फराइज अदा हो रहे हैं, हो जाते हैं। हाउ डू वी इंप्रूव दिस, क्या कहा था, ये है इस्तेराब, ठीक है। किस चीज का इस्तेराब, कि मेरी इबादतें क्या इबादत कहलाने के काबिल भी हैं, इस तरफ इंसान की तवज्जो मुड़ जाए। अच्छा, जिसकी तवज्जो जो है वो इबादत की तरफ वैसे ही कोई नहीं है, ठीक है ना, बल्कि ये तो उसका रिस्पॉन्स होगा, जिसकी थोड़ी इबादत के बारे में फिक्र है ना, उसका ये रिस्पॉन्स होगा, बाकी लोग इबादत से इबादत की तो कोई बात ही नहीं, तो फिर उनके क्या, ये हम तो बड़े अच्छे मुसलमान हैं, हम तुझे बड़े अच्छे मुसलमान हैं, अब तो हमें बस इत्तेहाद करने की जरूरत है, क्योंकि सारे लोग तो मुसलमान हैं, और अब तो क्या, अब हम क्या चीज की कमी है, किस चीज की कमी है भाई, उम्मत के अंदर इत्तेहाद की कमी है, नहीं, इत्तेहाद हो जाए सब ठीक हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना। तो अब जो है वो इसी चक्कर में लगे हुए मीडिया की खबरों के ऊपर, इत्तेहाद नहीं करते, इत्तेहाद नहीं करते, इत्तेहाद नहीं करते, और किसी को काफिर करार दे देते हैं और अपने आप को मुसलमान समझते हैं और दूसरे को काफिर करार दे देते हैं, इत्तेहाद नहीं करते। ठीक है ना। तो अब इसको आप क्या करेंगे कि उसको जो है वो आप इबादत में लगाएं? नहीं, उसको आप इबादत में नहीं लगा सकते, इबादत का इस्तराब उसको नहीं होने वाला है। उसको किधर लगाना होगा कि क्या तुम जो इत्तेहाद मुस्लिमीन की बात कर रहे हो, और मैं अकाबरीन की बात नहीं कर रहा, उनकी बात नहीं मेरे सामने कोट किया, उन्होंने भी तो यही कहा था, ठीक है, बल्कि नहीं कि क्या तुम ईमान वाले भी हो जो तुम मुसलमानों के इत्तेहाद की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है ईमान क्या चीज होती है? क्या तुम खुद ईमान वाले हो? क्या फलाना शख्स जिससे तुम इत्तेहाद की बात कर रहे हो, क्या वो ईमान वाला है? बल्कि दूसरे की बात तुम छोड़ो, तुम अपनी बात करो, क्या तुम ईमान वाले हो? क्या तुम्हें पता भी है ईमान के तकाजे की बात नहीं, बल्कि ईमान की शराइत क्या होती है, ईमान की तारीफ क्या होती है, राइट? ईमान की तारीफ क्या होती है, क्या चीज होती है ईमान? आप यकीन करें किसी को पता नहीं होगा इस जवाब सवाल का जवाब। अकीदा, एक भाई कहने लगे कि उम्मत में अकीदे की अहमियत खत्म हो गई, या मेजॉरिटी में अकीदे की अहमियत नहीं। मैंने उनको जवाब दिया, नहीं, बल्कि मेजॉरिटी को यह बात पता ही नहीं है कि अकीदा किस चीज को कहते हैं, ये अकीदा लफ्ज इसका मतलब क्या है। अहमियत खत्म नहीं हुई, बल्कि अकीदे का इल्म ही खत्म हो गया कि ये चीज क्या होती है। नहीं पता हमें अकीदा क्या चीज होती है, नहीं पता हमें अकीदा क्या चीज होती है, ठीक है। अहमियत तो उस वक्त होगी ना जब आपको उस चीज की डेफिनेशन पता होगी, फिर आप उसको अहमियत दे रहे हैं या उसको अहमियत नहीं दे रहे हैं, राइट? द क्वेश्चन ऑफ अहमियत इज नॉट इवन रेलेवेंट, वी डोंट इवन नो व्हाट अकीदा इज। मैं आप अकीदों की लिस्ट नहीं मांग रहा हूं, लिस्ट नहीं पूछ रहा हूं कि ये अकीदा, ये अकीदा, ये अकीदा, डेफिनेशन कह रहा हूं, अकीदे की तारीफ ही नहीं पता हमें कि क्या चीज होती है, ठीक है। तो लोगों को इस इज़्तिराब में मुब्तला करना है हमें, क्या क्या ईमान भी है, ईमान भी बाकी है, ठीक है ना? तो ईमान की नफी, राइट, ईमान की नफी करनी है कि तुम्हारे अंदर ईमान भी है, हमारे अंदर, मैं अच्छा अपनी बात रखे ना, दूसरों की बात ना करें, क्या मेरे अंदर वाकई ईमान भी है, राइट? क्या तुम्हारे अंदर ईमान भी है, ठीक है? ईमान की नफी करनी है। क्या मतलब ईमान की नफी? ये नहीं कि नऊज बिल्ला हमें काफिर हो जाना है, बल्कि हमें इस फिक्र में मुब्तला करना है। दूसरी बात, इल्म, राइट, अजम्पशंस को इल्म समझ के बैठे हुए हैं, गुमानों को इल्म समझ के बैठे हुए हैं कि जी बहुत इल्म है, बहुत अच्छा इल्म है हमारे पास, सही इल्म हमारे पास है, इसकी नफी करनी है, इस सोच की नफी करनी है कि नहीं बच्चों, कोई इल्म नहीं है तुम्हारे पास, और दलाइल के साथ नफी करनी है, प्रूफ करना है कि तुम्हें क्या ये बात पता थी कि इसका मतलब ये होता है, तुम्हें पता था इस बात का क्या मतलब होता है, नहीं? तफसील बतानी है कि इसका तो ये मतलब था, और ऐसी तफसील बतानी है जिसका वो इनकार ना कर सके, कि वो इनकार ना कर सके, ताकि उसका जो ये जोम है ना, जो ये अपने बारे में गुमान है कि जी मुझे तो पता है, उसका ये गुमान खत्म हो जाए, उसका अपने बारे में गुमान खत्म हो जाए, ठीक है। जब उसको ये परेशानियां लगेंगी ना, ईमान की परेशानी लगेगी, इल्म की परेशानी लगेगी, राइट, और अपनी इबादत की परेशानी लगेगी, तो उससे क्या होगा, सबसे पहले तो उसकी तवज्जो जो है ना इन खराफात से हटेगी, जो वो मीडिया के ऊपर मुस्तकिल जो है ना वो लगा हुआ है ना, या लगी भी है ना, उधर से उसकी तवज्जो हटेगी, और फिर किधर तवज्जो जाएगी, फिर उसको तवज्जो भी गाइड करनी होगी, फिर उसकी तवज्जो फिर अल्लाह की तरफ लगानी होगी कि अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से जुड़ना है, ठीक है। अल्लाह, मेरे पास तो अब तक ईमान ही नहीं था, मैं तो जिस चीज को ईमान समझ रहा था वो तो ईमान है ही नहीं, राइट? तो अल्लाह से पहले मदद मांगो, अल्लाह ताला से मदद, अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला से रुजू, ठीक है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो, फिर उसके बाद जो है वो असबाब इख्तियार करना कि अच्छा ईमान की हिफाजत कैसे करनी है, क्या असबाब मौजूद हैं जिन जिनसे जुड़ करके फिर मेरे ईमान की हिफाजत हो। अब उसको फिर असबाब से इंट्रोड्यूस करवाना होगा, रूशनास करवाना होगा जी ये असबाब हैं, और वो भी दलाइल के साथ, खाली लफाजी के साथ नहीं, जैसे कि आज आप में से अक्सर को जो मैसेज भी किया था, सैंपल दे करके, आपको असबाब बेचने हैं ना कि भाई है ये इन ईमान की हिफाजत का ये सबब है, इस सबब से अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपकी भी ईमान की हिफाजत हो जाएगी। खाली बोल बोल करके नहीं, सैंपल दिखाना होगा उनको, सैंपल दिखाना होगा कि देखो ये बात जो ये कर रही हैं, जो ये समझा रहे हैं, ठीक है, क्या आपको ये बात बताती पहले, क्या कभी सोचा था आपने इस तरीके से, क्या आपके वहमो गुमान में भी ऐसी बात आई थी, क्या जो इत्मीनान के साथ आप जिंदगी गुजार रहे थे तो क्या वो इत्मीनान जो है वो वाकई इत्मीनान कहलाने के काबिल भी था वो इत्मीनान, ठीक है। तो ये हमारा टर्फ है, ये हमारी पिच है, और ये हमारी पिच से मुराद ये हमारे मशायख की पिच है। हमारे मशायख के यहाँ सबसे पहली चीज जो अभी बताया ना, इस्तराब, ठीक है, तो इस्तराब तो फिक्र और परेशानी को कहते हैं ना, ठीक है, लेकिन इस्तराब के नतीजे, ये इस्तराब हासिल कैसे होता है, ये हमारे मशायख क्या फरमाते हैं, दीदे कसूर से, दीदे कसूर, कि जब अपने कसूरों की दीद नसीब हो जाती है ना, तब इस्तराब मिलता है इंसान को, फिक्र और परेशानी मिलती है इंसान को। और फरमाया कि तसव्वुफ तो इस्तराब का ही नाम है, अगर इस्तराब ना रहा तो तसव्वुफ ही ना रहा, यानी तस्किया नफ्स वगैरह अब नहीं हो सकता अगर तुम्हें से इस्तराब ही खत्म हो गया तो, ठीक है। इसी वजह से साजिश ने कहा था कि अल्लाह का शुक्र अदा करने की जरूरत है कि अगर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। जज़ाकअल्लाह, ये खवातीन की तरफ से सवाल जो था ये मर्दों में भी कॉपी कर दिया गया है, ठीक है, उसी पे खवातीन में भी ये शेर आया था, मर्दों में भी आ गया, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब खां है मगर साहिबे किताब नहीं। अब तो किताब से फरागत हो चुकी है, तुझे सोशल मीडिया से मुमकिन नहीं फराग के तू सोशल मीडिया खुआ है मगर साहिबे किताब नहीं। अब तो साहिबे किताब होना जो है वो मुसीबत हो गई है, क्योंकि कोई साहिबे किताब ही नहीं होता, ठीक है, तुझे सोशल मीडिया से फुर्सत मिले तो फिर तो कोई दूसरा काम करे ना फिर, ठीक है, तो भाई ऐसे फुर्सत नहीं मिलेगी, सोशल मीडिया बुरा, सोशल मीडिया बुरा, सोशल मीडिया नहीं, आपको कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये जो अभी बात हुई है ना कि भाई ये कौन सी इबादत, कैसी इबादत, ठीक है, तो इन चीजों को हमें टॉक ऑफ द टाउन बनाना होगा, टॉक ऑफ द टाउन बनाना होगा, जिस तरह से शैतान ने अपनी मीडिया की खबरों को टॉक ऑफ द वर्ल्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो आगे मारूफ मसाइल में मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि, बल्कि एक लाइन रह गई थी कि आज तुम उनसे बेजार और वो तुमसे बेजार, शफात क्या करेंगे तुम्हारी, ठीक है, जिनके दुम में तुम लगे रहते थे ना, तो वो तो तुम्हें छोड़ चुके हैं, वो तुम्हारी शफात क्या खाक करेंगे, और वो तुम्हारा दावा जो मजकूर हुआ है कि तुम ये जो दावे शावे करते थे सब तुमसे गया गुजरा हुआ, छुट गया सब सब तुमसे गायब हो गया, कुछ काम का ना निकला, तो अब तो पूरी पूरी मुसीबत पड़ेगी तुम्हारी, ठीक है ना, यानी कर करा के तो तुम बेड़ा गरक ही आए हो अपना, और तुम्हारे जो जोम में तुम्हारी तुम्हें यहां से छुट्टी करवाने वाले जो लोग थे ना वो भी गायब हो गए, ठेंगा दिखा गए तुम्हें, ठीक है, अब तो पूरी मुसीबत है। तो आगे मारूफ मसान में फरमाते हैं कि पिछली आयात में हजरत खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के अजीम शान इनामात और उनके बुलंद दरजात का जिक्र था, जिनमें पूरी नस्ल आदम अलैहिस्सलाम को अमूमन और अहले मक्का व अरब को खसूसन अमली सूरत में यह दिखलाना मकसूद था कि जो शख्स अल्लाह ताला की मुकम्मल अताअत को अपना मकसद जिंदगी ठहरा ले, अल्लाह ताला की कामिल अताअत, ठीक है, ये नहीं कि अल्लाह की कभी और किसी कभी जो है वो शैतान की, ठीक है, कभी तागूत की तो कभी जो है वो मौलवी की तो कभी किसी की कभी किसी की, ऐसे नहीं, बल्कि जो शख्स अल्लाह ताला की मुकम्मल अताअत को अपना मकसद जिंदगी ठहरा ले, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ठहराया था, और उसके लिए अपनी महबूब चीजों को कुर्बानी की कुर्बानी पेश करे, जैसे हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पेश की कि माँ बाप और कौम वतन सबको अल्लाह के लिए छोड़ दिया, फिर बिनाए बैतुल्लाह की अजीम खिदमत के लिए मुल्क शाम के सब्जादारों को छोड़कर मक्का मुकरमा का रेगिस्तान इख्तियार किया, ठीक है ना, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी आफ्टर कुर्बानी आफ्टर कुर्बानी आफ्टर कुर्बानी, है ना, पहले जो है वो अब्बा हुजूर और खानदान को छोड़ा, शाम गए। फिर उसके बाद अल्लाह के हुक्म के ऊपर शाम को छोड़ा और बैतुल्लाह की बिना के लिए यानी तामीर के लिए मक्का मुकरमा जैसे बेवादिन गैर जी जरअन, जहां पे कोई जरात नहीं, जहां पे कुछ यानी कुछ भी नहीं, वहां पर वहां जो है वो मुल्क शाम के सब्जादारों को छोड़कर मक्का का रेगिस्तान इख्तियार किया। बीवी और बच्चे को जंगल में छोड़कर चले जाने का हुक्म हुआ तो फौरी तामील करी, ठीक है। फिर बीवी बच्चों को छोड़ करके चले गए, चले गए बिल्कुल वापस है। अकलौते महबूब बेटे की कुर्बानी का हुक्म हुआ तो अपने हद इख्तियार तक उसकी मुकम्मल तामील कर दिखाई, ठीक है ना। यानी जो मोहब्बत वाली चीज उसको छोड़ करके आगे, फिर मोहब्बत वाली चीज आए उसको छोड़ करके आगे, फिर मोहब्बत वाली चीज आए उसको छोड़ करके आगे। अल्लाह जदाए खैर दे मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह को, क्या जबरदस्त तरीके से जो है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी 2 लाइनों के अंदर समेट दी, ठीक है। तो ऐसे अताअत गुजार का असल बदला तो कयामत के बाद जन्नत ही में मिलेगा, लेकिन दुनिया में भी हक तआला उनको वो मर्तबा और दौलत अता फरमाते हैं कि जिसके सामने सारी दुनिया की दौलतें मांद पड़ जाती, ठीक है। तो अब ऐसी कुर्बानी हम में से तो कोई कर नहीं सकता जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, यानी उनके लेवल की कुर्बानी तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनकी इत्तबा में जो हमारे ऊपर अल्लाह ताला हालात भेज रहे हैं उनमें तो हम कर सकते हैं ना। तो हम छोटे लोग हैं तो छोटे हालात हैं तो छोटी कुर्बानी, वो बड़े लोग थे बड़े हालात थे बड़ी कुर्बानी है। उनमें से कोई अपनी बेटी की कुर्बानी इस तरह से ना तो दे सकता है ना अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत है बेटे को कुर्बान कर देने की, है ना। ये तो नहीं कि जबा कर दो बेटे को, अब तो ये शरीयत के अंदर जायज ही नहीं कि बेटे को जबा करो, ठीक है। तो हमारे लिए ऊपर तो वो वाली कुर्बानी तो अप्लीकेबल ही नहीं हो रही, लेकिन जो हमारे हालात हैं हर एक के साथ जो अल्लाह ताला ने जो नेमत दी है जिसको जो नेमत दी है तो उसी नेमत का तुम लतसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हर एक से उस नेमत का सवाल किया जाएगा जरूर बिल जरूर जो उसको दी गई है। हमसे इस्माइल अलैहिस्सलाम का सवाल नहीं किया जाएगा कि तुम्हें मैंने इस्माइल दिया था तो तुमने इस्माइल का क्या किया, भाई मुझे नहीं दिया था इस्माइल यार, मुझे जो बेटा दिया था वो उस बेटे के बारे में से सवाल होगा, ठीक है। तो हर एक के अपने अपने हालात होते हैं, उसको उन्हीं हालात में रह करके अल्लाह ताला को राजी करना होता है, ठीक है। तो हजरत सलील्ला ने अपनी कौम बरादरी को अल्लाह के लिए छोड़ा तो उसके बदले में उनको अम्बिया अलैहिस्सलाम की जमात मिली जो बेशतर उनकी औलाद ही में से हैं। इराकी और शामी वतन को छोड़ा तो अल्लाह का घर और बलद अमीन और उम्मुल कुरा यानी मक्का मुकरमा नसीब हुआ, यानी एक घर जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मक्का मुकरमा में परमानेंट बन गया, ठीक है। हत्ता के वो मौत के बाद भी कहां पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहते हैं, बैतुल मामूर, राइट, बैतुल मामूर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो नबी अलैहिस्सलाम गए थे ना जब मेराज पर, तो सातवें आसमान पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगाए बैठे हुए थे, ठीक है। ऐसा बैतुल माम ऐसा यानी काबतुल्ला अता फरमाया कि दुनिया में भी वो घर बन गया और दुनिया के बाद भी वही काबतुल्ला का जो आसमानी वर्जन है बैतुल मामूर वहीं पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को है। वरना बाकी नबी कहाँ पर है, कोई पहले आसमान पर है कोई दूसरे आसमान पर है कोई तीसरे आसमान पर कोई चौथे आसमान पर कोई छठे आसमान पर है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम सातवें आसमान पर, अल्लाह अकबर कबीरा, ठीक है। तो क्या अल्लाह ताला ने अपने खलील के साथ मामला किया, तो वो फरमाया कि इराकी और शामी वतन को छोड़ा तो अल्लाह का घर और बलद अमीन और उम्मुल करा यानी मक्का मुकरमा नसीब हुआ, उनकी कौम ने उनको जलील करना चाहा तो उसके बदले में उनको सारी दुनिया और कयामत तक आने वाली नस्लों का इमाम और पेशवा बना दिया कि दुनिया के मुख्तलिफ अकवाम मजाहिब आपस के बड़े बड़े इख्तलाफात के बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तआज़ीम और तकरीम पर मुत्तफिक चले आए। आपस में कितना ही लड़े यहूदी और ईसाई और मुसलमान, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मामले में सारे, ठीक है, सारे मुत्तफिक। इस सिलसिले में 17 अंबिया अलैहिस्सलाम की फहरिस्त शुमार की गई थी जिनमें से बेशतर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद व जुर्रियत में दाखिल हैं, और ये बताया गया था कि ये सब वो बुजुर्ग तरीन हस्तियां हैं कि जिनको हक तआला ने सारे आलम के इंसानों में से अपने दीन की खिदमत के लिए मुंतखब फरमाया और उनको सीधा रास्ता दिखलाया है। ठीक है, मजकूर सदर आयात में से पहली आयत में। अच्छा, तो पीछे जो है वो काफी अरसा पहले हमने कौन सी वो दूसरी सूरत थी जिसके अंदर यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकयात मजीद थे। सूरह इब्राहिम गालबन वो नहीं थी, वो कोई और सूरत थी। एनीवे, तो वो हम अपने खवातीन की जो दरस कुरान वाली क्लास होती है उसमें पढ़ा रहे थे। तो वो फिर उसमें बात ये चल पड़ी थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला जो है ना वो खवातीन के साथ बड़ा बड़ा मुतशाबे है, बड़ी मुशाबहत है उसकी। वो कैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपनी जो है ना सूरह अंबिया पढ़े थे, जो ये भी याद था सूरह अंबिया के अंदर पढ़ाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अपने फॉलोअर्स जो है ना उनका जिक्र नहीं आता। ठीक है, ये नहीं कि कोई उनके ऊपर ईमान नहीं लेकर के आया था, एक तो उनके अपने खानदान वाले तो ईमान लेकर के आए ही थे, पिछले दिनों भी बात हुई थी, बेटे इसहाक और इस्माइल दोनों, बीवी दोनों, ठीक है ना, और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम, लेकिन और भी थे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते थे, लेकिन ऐसे नहीं उनका कोई तस्करा मिलता कि जैसे उनकी बड़ी जमात थी और बड़े उनके जो है वो हजारों की, जैसे इवन सालेह अलैहिस्सलाम के हजारों फॉलोअर्स थे ईमान वाले, अगरचे के काफिर जो है वो उनसे भी ज्यादा थे, लेकिन फॉलोअर्स भी हजारों की तादाद में थे जो उनके साथ जो है फिर वो यमन जा करके हिजरत करके यमन गए। जब उनकी कौम पर अजाब आ गया, कौम साले की कौम पे अजाब आ गया, तो फिर हजारों की तादाद में उनके जो मुतबईन थे वो उनके साथ यमन मुंतकिल हो गए और वहां पर फिर साले इस्लाम की मौत आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऐसा तस्करा नहीं मिलता। ठीक है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब तस्करा आएगा तो क्या, इसहाक व याकूब, इसहाक व याकूब, ठीक है, और फिर उनके आगे मजीद यूसुफ और जुरियत। तो इसका ताल्लुक खवातीन के साथ कैसे, तो वो ऐसे कि खवातीन भी जब अल्लाह की खातिर कुर्बानी देती है ना, तो ऐसा नहीं होता कि उनके जो है वो नाम के डंके बज जाते हैं दुनिया के अंदर। ठीक है, यानी नाम के डंके तो खैर बज भी जा, वो ये गलत कह गया मैं, नाम के डंके तो बज भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनकी कोई जमात बन जाती है, उनके मुरीदीन की जो है वो बड़ी तादाद हो जाती है और उनके जो है वो माशाल्लाह बसनत पे बिठा दिया जाता है कि जी अब जो है वो आप मुराकबा करवाएं, अब जो है आप जो है वो बयान करें। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता खवातीन के साथ, बल्कि क्या होता है, अल्लाह ताला दीन की निस्बत को उनकी औलादों में चला देते हैं, उनकी नस्लों में चला देते हैं। ठीक है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्लों के अंदर अल्लाह ताला ने दीन को पसंद फरमाया। ठीक है, अब जो बनी इसराइल के जो जो झूठे लोग थे उनकी बात नहीं हो रही, लेकिन जो नबी थे वो भी तो इन्हीं के औलाद में से थे ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद में से। ठीक है, तो इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि जी हमारे मुरीद बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं और हमारी जो है वो क्या कहते हैं दुनिया में हमारे जमाने हमारी हमारे सामने हमारी दुनिया में जो है वो आवभगत हो रही है कि नहीं हो रही। भाई अल्लाह ताला आपके नस्लों के अंदर जो है ना वो काम करेंगे, मतलब तो कबूल करेंगे। ठीक है, तो गोया के जैसे उन्होंने लिखा है खवातीन का काम ही नस्ल की परवरिश अल्लाह ताला ने रखा है, वन ऑफ द टू थिंग्स। ठीक है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी ऐसे ही जो है वो अल्लाह ताला ने मिसाल बना दिया। ठीक है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बड़ी मिसाल कमी होती है फिर दुनिया के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम ही है जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फिर ज्यादा अफजल कहलाएंगे। तो अल्लाह ताला ने अपनी बंदियों के लिए ऐसी मिसाल कायम करके दिखाई। ठीक है, तो मजकूर सदर आयात में से पहली आयत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमा कर अहले मक्का को सुनाया गया है कि किसी कौम के आबाओ अजदाद महज बाप दादा होने की हैसियत से काबिले तकलीद नहीं हो सकते कि उनके हर कौल और फेल को काबिले इत्तेबा समझा जाए, जैसे कि अमूमन अरब और अहले मक्का का ख्याल था कि बस बाप दादा हैं तो बस ठीक होंगे। ठीक है, बल्कि तकलीद और इत्तेबा के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हम जिसकी पैरवी करते हैं वो खुद भी हिदायत के सही रास्ते पर है या नहीं है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम की एक मुख्तसर फहरिस्त शुमार करके फरमाया गया कि उलाइक अल्लदीना हदल्लाहु, यानी यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है, फिर फरमाया फबिहुदा हु मुक्तदे, यानी आप भी उनकी हिदायत और तरीक़ेकार को इख्तियार फरमाएं।
यानी ये मुतलका नहीं फरमाया कि बस जो आपके बाप दादा है ना आप उनकी इत्तबा फरमाएं, ऐसे भी तो कह सकते थे ना आप अपने बाप दादाओं की इत्तबा फरमाएं। नहीं भाई, मुतलकन को थोड़ी, एब्सोल्युटली को थोड़ी हर बाप दादा की इत्तबा करना, नहीं, जो बाप दादाओं में से हिदायत पर थे उनकी इत्तबा करनी है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यही अस्लूब रखा जो कि हकीकत भी रखा, यही है ऑफकोर्स, अल्लाह ने हकीकत बनाई और यही हकीकत है कि भाई सेलेक्टेड बाप दादा जिनको हिदायत मिली, जिन्होंने हिदायत को कबूल किया, उनकी इत्तबा करनी है, और जिन्होंने नहीं हिदायत को कबूल किया वो चाहे आपके बाप दादा हो उनकी इत्तबा नहीं करनी। ठीक है, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, वो मखलूक जो है वो किसी मखलूक की इत्तबा की अताअत नहीं करनी है जिसमें अल्लाह की नाफरमानी आती हो, चाहे वो बाप दादा में से क्यों ना हो, है? मम्मी डड्डी डैडी में से क्यों ना हो, अगर वो अल्लाह की दीन के खिलाफ बात कर रहे हैं, हुक्म कर रहे हैं, उनकी अताअत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अम्मा अब्बा के भी खैर में यही है कि वो वही बात किया करें जो उनके रब की बताई हुई बात, जो उनके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात है। क्यों करते हैं उनके खिलाफ बातें, क्यों करते हैं भाई अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ बातें जो हैं वो क्यों करते हैं, अपनी औलाद को क्यों हुक्म देते हैं अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ? तो तुम्हारी अपनी गलती है भाई, अब भुगतो। अगर तुम्हारी औलाद तुम्हारी अताअत से इनकार करे तो हु इज टू ब्लेम, नॉट योर औलाद, यू यू आर टू ब्लेम। ठीक है, तो क्या क्या मुसीबत क्या पड़ी हुई है, क्यों जहन्नुम कमाते हो अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करते? दुनिया में भी जाहिर है तुम्हें जहन्नुम ही मिलेगी, दुनिया की भी जहन्नुम, के जब तुम्हारी अपनी औलाद तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि वो तो तुम्हारी इताअत करने की इजाजत नहीं है उसको। ठीक है, तो इसमें एक हिदायत तो अहले अरब और तमाम उम्मत को यह है कि तकलीद आबाई की वहम परस्ती को छोड़े, आबाओ अजदाद की जो तकलीद है ना, ये वहम परस्ती है, वहम है कि जी बस जो है ना वो हमने तो बड़ों की अतात करनी है जी, बस बस, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वहम है। वहम का मतलब होता है देयर इज नथिंग टू डू विद रियलिटी। ठीक है, तो ये मशरूत है और खुदा ताला की तरफ से हिदायत याफ्ता बुजुर्गों का इत्तेबा करें। ठीक है, ये हिदायत है। अब अब्बा अम्मा अगर खुदा ताला की हिदायत के ऊपर चल रहे हैं तो फिर अब्बा अम्मा की इताअत करें, बिल्कुल करें, फोर्स करें। ये कोई थोड़ी है कि अब्बा अम्मा अगर नेक हैं तो नहीं उनको छोड़ करके हमने जो है वो कोई नए नेक तलाश करने, नहीं भाई, अब्बा अम्मा नेक हैं तो आपके घर के अंदर मौजूद हैं आपके बुजुर्ग, उनकी इत्तबा करें। ठीक है, दूसरी हिदायत खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है कि आप सल्लम भी इन्हीं अंबिया साबिकीन का तरीक इख्तियार फरमाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम क्लास रोकते हैं, इसलिए कोई मैसेज अगर मेरी निगाह से रह गया हो तो मैं तो दोबारा से वो पेश कर दें यहाँ पर, या कोई सवाल वगैरह हो। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में एक बहुत अहम बात हुई थी जिसका ताल्लुक जो है वो इस वक्त की के हालात से है, हमारे ईमान से है। ठीक है, और आप यकीन करें पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है, ये जो फितने दज्जाल है ना उसकी एक और खास बात याद याद रखें, सुन लें, नबी अलैहिस्सलाम ने बताई हुई है बातें हमें पहले से। ठीक है, ये बात याद रखें कि नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, उर्दू में बयान कर रहा हूँ तो इस वजह से मफहूम ही कहूंगा उसको, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका मफहूम ये है कि दज्जाल उस वक्त तक नहीं आएगा, यानी उस वक्त तक जाहिर नहीं होगा कि जब तक कि इसका जिक्र मिंबर पर होना खत्म हो जाए, मिंबर पर होना खत्म हो जाए। तो मिंबर किस चीज को कहते हैं, मिंबर किस चीज को कहते हैं, वो जो मस्जिद के अंदर एक वो चेयर बनी हुई होती है ना, ऊंची सी चेयर, उसको मिंबर कहते हैं, वो मस्जिद की चेयर के ऊपर से जाए वो दज्जाल का जिक्र खत्म हो जाएगा जी। मिंबर जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म को कहते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म, ठीक है, यानी मीडिया, जिसको मीडिया कहते हैं। तो पब्लिक डिस्कशन में दज्जाल का जिक्र नहीं होगा, इवन उलमाए कराम, इवन मशायखे उज़्ज़ाम,
इवन अकाबरीन, इवन अकाबरीन वो पब्लिक फोरम के ऊपर दज्जाल का जिक्र नहीं करेंगे, चाहे वजह कोई भी हो, चाहे वजह कोई भी हो, कोई भी बने वजह, लेकिन वो नहीं करेंगे इसका जिक्र, ठीक है? चाहे जान का खौफ हो, चाहे, और वो जान का खौफ होना कोई नाजायज बात नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब जब जान का खौफ हुआ था ना, ठीक है, बल्कि इज्जत का खौफ, जान का खौफ तो लगता है जैसे इज्जत का खौफ, क्या कि अम्मा सारा उनको जो है ना वो बादशाह पकड़ लेगा और इज्जत का मसला हो जाएगा, ठीक है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौरिया इख्तियार किया था वहां, ठीक है? ये तो नहीं कि नहीं, अल्लाह तो अल्लाह ताला मेरी बीवी को बचाएगा, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, बस भाई और भी है, ठीक है? हदीस से साबित है इस तरीके से कि आप जो है ना इस सूरत में खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, ठीक है? तो जो भी रीजन बने, लेकिन दज्जाल का मेंशन नहीं होगा, ठीक है? मीडिया के ऊपर जो भी बात करेगा। अच्छा, एक और इसके अंदर मसला बड़ा है, एक और मसला इसके अंदर ये है कि दज्जाल के तस्करे का मतलब हम ये समझते हैं कि जो दज्जाल के ऊपर हदीसें आई हैं ना, उनका तस्करा होना, ठीक है? कि भाई दज्जाल के हदीसों का तस्करा नहीं होगा, तो वो हम देखते हैं कि नहीं, वो तो हो रहा है, हदीसों का तस्करा तो हो रहा है, पब्लिक फोरम के ऊपर भी हदीसों का तस्करा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दज्जाल का तस्करा हो रहा है पब्लिक फोरम के ऊपर। तो फिर ये क्या बोल रहे हैं कि तस्करा खत्म हो जाएगा? और भाई मैं तो नहीं बोल रहा, उन्होंने भी अक्सर में फरमाया था, मैं तो बस हदीस को नकल कर रहा हूं। लेकिन समझने की बात ये है, आपको समझाया ये जा रहा है कि हदीसों के तस्करे का मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि दज्जाल का तस्करा हो रहा है। क्यों क्यों? यहां पे इन्होंने जवाब लिखा, पढ़ लेते हैं। दैट्स वाई वी कैन नॉट रिलाई ऑन पब्लिक कॉमेंट्स ऑफ अकाबिर उलमा ऑन करंट इवेंट्स, वी नीड टू हैव अ वन टू वन कॉन्टैक्ट विद उलमा टू कीप आवर अंडरस्टैंडिंग करेक्ट, ठीक है? ठीक है, चले, वो तो आपने दूसरी वाली बात का जवाब दे दिया, दूसरी वाली बात समझा दी। लेकिन अगर आज मिंबर के ऊपर दज्जाल वाली हदीसों का भी तस्करा हो रहा है, तो वो भी दज्जाल का तस्करा नहीं कहलाएगा। क्यों ये ऐसा, क्यों क्यों भाई? फिर आपकी जान छोड़ देंगे, आज की क्लास खत्म कर देंगे इसके बाद। अगर दज्जाल वाली हदीसों का भी तस्करा हो, तो भी वो दज्जाल का तस्करा उस मफहूम में नहीं कहलाएगा। क्यों? एग्जैक्टली, ठीक है, ख्वातीन की तरफ से जवाब सही नहीं आया है, मर्दों की तरफ से जवाब बिल्कुल सही आया है के नो एलेबोरेशन एंड नो कनेक्शन विद द करंट इवेंट्स, नो कनेक्शन विद द करंट इवेंट्स, ठीक है ना? वो हदीसें 1400 साल पहले आई थी, क्या पता भाई किस वक्त के लिए आई थी, 20वीं सदी के लिए तो उसमें नहीं लिखा हुआ, हदीस में तो नहीं लिखा हुआ कि 21वीं सदी के अंदर ये सब कुछ होगा, ठीक है ना? तो अब हदीसें सुन ली, हाँ जी भाई ठीक है, हदीस में आया था ये दज्जाल ऐसा होगा, दज्जाल वैसा होगा, दज्जाल वैसा, भाई उसको क्या आप अपने अहवाल से जोड़ सकते हैं? आपको समझ में आ रहा है कि दुनिया में इस वक्त जो हो रहा है उसका क्या ताल्लुक है उन हदीसों के साथ? अगर आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर ये ऐसे ही है कि जैसे आपने कुछ समझा ही नहीं, आपने उन हदीसों से कुछ समझा ही नहीं, खाली हदीसों के अल्फाज सुन लेने से तो नहीं बात समझ में आती है ना, ठीक है ना? दरस कुरान की क्या जरूरत थी, दरस हदीस की क्या जरूरत थी? अगर हदीस का अल्फा के अल्फाज सुन करके और कुरान मजीद के अल्फाज सुन करके सुनने वालों को सारी बात समझ में आ जाती, तो जरूरत क्या थी भाई दरस कुरान करने की? तफसीर लिखने की क्या जरूरत थी मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह को? तो ये तो थ्योरी है ना, बस अल्फाज का सुन लेना, हदीस के अल्फाज का सुना देना, ये तो थ्योरी है, खुसूसन अवामुन नास के लिए ये तो थ्योरी है, क्योंकि रिलेशनशिप तो कुछ भी नहीं हुई ना उससे, ये रिलेशनशिप मिंबर पे नहीं मिलेगी, ठीक है ना? ये नहीं मिलने वाली है मिंबर के ऊपर। तो अब जो मिंबरों से जो है वो दीन ले रहे हैं, खाली खाली मिंबरों से दीन ले रहे हैं, तो भाई फितने दज्जाल के जमाने में ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये तो कहफ। फितने दज्जाल के जमाने में क्या है बचत? कहफ,
कहफ, नॉट विंडो शॉपिंग, नॉट विंडो शॉपिंग, कल समझाया था विंडो शॉपिंग का मतलब, ठीक है। कहफ में दाखिल होना पड़ेगा, जिस तरह शॉप में दाखिल होकर के जो है ना फिर खरीदारी होती है, विंडो शॉपिंग से खरीदारी नहीं होती, ठीक है। अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम।